अच्छा, अब हमें मैनेजमेंट ऑफ सोराइसिस के बारे में पूछ सकते हैं। तो हमने कहना है कि सबसे पहले तो हमने पेशेंट को एजुकेट करना है और काउंसिल करना है कि वो जितने भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल करे, ब्लड प्रेशर को, वेट को रिड्यूस कर ले, शुगर को कंट्रोल करे, स्मोकिंग को स्टॉप कर ले। उसके बाद हम इसके लिए एक एमोलियंट्स बनाते हैं और वो इनको या तो सिंपल पेट्रोलेटम जली दे के, या इनके लिए हम सोराइटिक ऑइंटमेंट लगाएंगे बनाएंगे या LSR पेस्ट बनाएंगे, या सिंपल ये टॉपिकल स्टीरॉयड्स। अब इसके फिर कॉम्पोजिशन हम डिफर कर सकते हैं। इनको हमने बोलना है कि आप टॉपिकल स्टीरॉयड्स यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन विच एरिया और कितना इंड्यूरेटेड है, तो उसके मुताबिक हम लोग ने पोटेंट, वेरी पोटेंट, माइल्ड स्टीरॉयड यूज़ करना होता है। माइल्ड स्टीरॉयड में हमारे पास यही है, हाइड्रोकोर्टिसोन, मिथाइल प्रिडनिसोलोन, फ्लुसिनोलोन, एस्ट्रोनाइड जो कि 0.01%। फिर मॉडरेट या जो पोटेंट है उसमें हम क्लोबिटासोल प्रोप्रियोनेट, बीटामेथासोन डाइप्रोप्रियोनेट, या हमारे पास बीटामेथासोन वेलेडिएट, ठीक है, और ट्राइमेसिनोलोन एसिटोनाइड, फ्लुसिनोलोन प्रोप्रियोनेट, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। जो हमारे पास वेरी हाई है वो तो बीटामेथासोन डाइप्रोप्रियोनेट 0.05%, क्लोबिटासोल प्रोप्रियोनेट 0.05%, एंड हेलो बीटासोल प्रोप्रियोनेट 0.05%। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि अगर सपोज आपका जेनिटेलिया है या एक्सिला है, फीस है, तो वहाँ पे आप माइल्ड यूज़ करोगे, जितना रिकल्सिट्रेंट है वहाँ हम वेरी पोटेंट की तरफ जा सकते हैं। ये वही करा सकता है, एट्रोफी करा सकता है, टेलेंजेक्टेजियस करा सकता है, और स्किन की रिंकलिंग करा सकता है, और बहुत कम लोगों में अगर सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब हो गया तो हाइपोथैलेमस एक्सिस्कोपी जो है वो डिक्रीज कर सकता है, रिबाउंड फ्लेयर भी इसके साथ देखे गए हैं। हम कितना देते हैं वो बॉडी सर्फेस एरिया को कैलकुलेट करके हम पे टॉपिकल स्टेरॉयड, वो नोजल से जो निकलता है दैट इज़ इक्वल टू 0.5 ग्राम, जो 1 फिंगर टिप यूनिट के मुताबिक देते हैं, और बॉडी सर्फेस एरिया को हम वो रूल ऑफ 9 से कैलकुलेट करते हेड एंड नेक वाला हमारे पास जो है वो जो है 9 9 बन जाता है, और अपर लिम जो है 1 भी 9, दूसरा भी 9, और तुम्हारा इंटीरियर चेस्ट एंड एब्डोमेन भी 18 हो जाएगा, बैक भी 18 हो जाएगा, और तुम्हारे लिम्स भी दोनों आगे और पीछे से 18 18, और जेनिटल्स इज़ 1। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम लोग इन्होंने कहा कि अगर बहुत वेरी पोटेंट स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हो तो 50 ग्राम अ वीक तक रखो, और अगर पोटेंट है तो 100 ग्राम वीक तक रखो। फिर जो हमारे पास विटामिन डी है, वो अपने विटामिन डी जो हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि कैल्सिपोट्राइओल, कैल्सिट्राइओल, तो कैल्सिटोल, इसको जो हम अप्लाई करते हैं तो ये अपने विटामिन डी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं और ये हमारे कैट्रोसाइट की प्रोलीफरेशन को इनहिबिट करते हैं। जो हमारे पास इसमें है उसमें कैल्सिट्राइओल को हम लोग 50 माइक्रोग्राम पर ग्राम के से यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें पर ये होता है कि हाइपर कैलिसीमिया करवा सकता है। जो बाकी हैं कैल्सिट्राइओल टू कैल्सिटोल वो नहीं कराते। हम लोगों ने विटामिन डी को सैलिसिलिक एसिड के साथ और यूवी फोटोथेरेपी को भी सैलिसिलिक एसिड के साथ यूज़ नहीं करना, बस ये दोनों। फिर हम लोग आ जाते हैं डाइथ्रेनोल। तो डाइथ्रेनोल हमारे पास एंटी प्रोलीफरेटिव भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। डाइथ्रेनोल के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इन ग्राम फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जिसमें वो कोल्ड टार बात लेता है, यूवीपी थेरेपी होती है, उसके बाद इसने डाइथ्रेनोल जो है वो अप्लाई करना होता है। बस ये है कि ये इरिटेंट है थोड़ा सा और स्टेनिंग कर देता है क्लोथ्स की, और 6 मंथ्स में हमें इन लोगों के साथ 95% पासी जो है ना वो इम्प्रूव मिला है। फिर हम कोल्ड टार की तरफ आते हैं, जिसमें गोकर एंड मॉडिफाइड गोकर रेजीम होता है, उसमें भी ये लोग और अप्लाई करते हैं। अगर 24 आवर के अप्लाई करने के बाद यूवीबी थेरेपी दे दी गई तो ये तो सिंपल है। अगर उसने सिर्फ 5 आवर के लिए टार अप्लाई करके फोटोथेरेपी ली है तो वो मॉडिफाइड है। इसके साथ भी आपको फॉलिकुलाइटिस, इचिंग, बर्निंग और कॉन्टैक्ट एलर्जी, फोटो सेंसिटिविटी, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है डाइथ्रेनोल भी, और इसमें भी कॉशन लेना है। अच्छा, टॉपिकल रेटिनॉइड्स तो हमने नहीं लगाने होते, प्रेगनेंसी में नहीं देने होते। हमारे पास ये जो रेटिनॉइड्स होते हैं ये भी प्रोलीफरेशन ऑफ द स्ट्रैटम कॉर्नियम को कम करता है। टेज़ारोटिन या ट्रेटिनॉइन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकल कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, और वो भी प्रेगनेंसी कैटेगरी सी है। अच्छा, अभी हम लोग दो ऑइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सोराइटिक ऑइंटमेंट और LSR पेस्ट। सोराइटिक ऑइंटमेंट जो हम पेशेंट्स को ओपीडी में भी एडवाइस करते थे, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम 3% सैलिसिलिक एसिड लेते हैं, 6% हम लोग जो है वो लाइकर कार्बोनस जो बेसिकली कोल टार है वो 6% लेंगे, और उसके अलावा हम लोग इन लोगों के लिए 30 ग्राम ऑफ क्लोबिटासोल प्रोप्रियोनेट एंड द रेस्ट विल बी दी वाइट सॉफ्ट पैराफिन। तो ये 50 ग्राम का लगा के इसको लगाना होता है। ये सिर्फ क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस के लिए नहीं बल्कि सोराइटिक ऑइंटमेंट को हम क्रॉनिक एक्जिमा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सेबोरे डर्मेटाइटिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो और एरिया होगा अदर देन दीज प्लग्स, वहाँ पे ये सिंपल पेट्रोलेटम लगा देगा, और जो ये उभरे हुए निशान होंगे या इंडिकेटर होंगे उसके ऊपर ये सोराइटिक ऑइंटमेंट लगा लेगा, बीडी में लगाएगा और फॉर 4 वीक्स एंड देन फॉलो अप। अच्छा, उसके बाद लजार पेस्ट तो हमें पता ही है। लजार पेस्ट में अगर बोलते हैं कि 50 ग्राम बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 25 ग्राम वाइट सॉफ्ट पेट्रोलेटम ले लेंगे, और जो है हम लोग 12%, ये जो 12 ग्राम है वो ले लेंगे जिंक ऑक्साइड, 12 स्टार्च लेंगे, और जो है 1% हम लोग सेलिसिलिक ले लेंगे। तो ये 25 और वो 25, तो ये पूरा हो जाएगा। और अगर सपोज़ हम लोगों ने 100 ग्राम का बनाना है तो 50 ग्राम हम वो वाइट सॉफ्ट पैराफिन ले लेंगे, 24 24 हम लोग जिंक और सेलिसिलिक ये स्टार्च ले लेंगे, और 2 ग्राम हम लोग फिर वो ले लेंगे सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, जो जिंक होता है वो हमारे पास एज अ स्किन बैरियर एक्ट करेगा, और जो सैलिसिलिक है वो कैरेटोलिटिक एक्ट करेगा, और जो स्टार्च होगा वो हमारे पास एज अ फिलर एक्ट करेगा। तो ये हमारा लजार पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर हम लोगों को जब बोलेंगे कि कब आप टॉपिकल स्टीरॉयड्स यूज़ करोगे, जब हमें लगे कि सिर्फ 5% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है तो हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल स्टीरॉयड्स लेंगे, टॉपिकल थेरेपीज लेंगे। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा है तो हमने और ट्रीटमेंट भी एड ऑन करनी होती है।